एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम साहित्य के एक जरा अंधेरे मगर बेहद दिलचस्प कोने की ओर चल रहे हैं।
हाँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ डर भी है और आकर्षण भी।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं ब्रम स्टोकर के 1897 में छपे कालजयी गॉथिक उपन्यास ड्रैक्युला की। इसने न सिर्फ एक जॉनर को नई पहचान दी बल्कि एक ऐसा किरदार रचा जो अमर हो गया।
सही कहा, ड्रैक्युला का नाम सुनते ही एक पूरी छवि उभर आती है जहन में।
हाँ, और इसके लेखक ब्रम स्टोकर वो आयरलैंड के थे। विक्टोरियन दौर की उथल पुथल, लंदन का मशहूर लिसियम थिएटर और महान एक्टर हेनरी अर्विंग का साथ, इन सब का असर उनकी लिखाई पर साफ दिखता है।
हाँ, वो थिएटर वाली नाटकीयता तो उपन्यास में है, हर सीन जैसे मंच पर घट रहा हो।
वही तो, ड्रैक्युला सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये उस वक्त का आईना भी है जिसे फिन द सेकल कहते हैं, सदी का अंत।
मतलब वो दौर जब नई चीजें आ रही थीं, आधुनिकता, विज्ञान, साम्राज्यवाद, पर साथ ही पुराने डर भी थे।
हाँ, जैसे दबी हुई कामुकता का डर, अंधविश्वासों का डर और जो समझ से परे है उसका डर। स्टोकर ने बड़ी खूबी से पूर्वी यूरोप की पिशाच कहानियों को विक्टोरियन इंग्लैंड की इन चिंताओं से मिला दिया।
और कहानी कहने का तरीका भी बहुत अलग है। वो चिट्ठियों, डायरी की एंट्रीज, अखबारों के टुकड़ों से कहानी आगे बढ़ती है।
हाँ, एपिस्टोलरी स्टाइल कहते हैं इसे। पाठक को लगता है जैसे वो खुद पहेली सुलझा रहा है।
बिल्कुल, और कहानी का सार क्या है? काउंट ड्रैकुला नाम की एक सदियों पुरानी बुराई का लंदन जैसे आधुनिक शहर पर हमला।
तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, समझेंगे कि कैसे परंपरा और आधुनिकता मिलकर उस बुराई का सामना करते हैं जो समय और समझ से परे है।
चलिए शुरू करते हैं फिर।
तो कहानी का आगाज होता है एक नौजवान अंग्रेज वकील जोनाथन हार्कर से।
शुरू में तो सब ठीक लगता है ना, काउंट बड़े तहजीब वाले लगते हैं, महल भी आलीशान है, भले ही थोड़ा वीरान सा क्यों ना हो।
हाँ, लेकिन वो शुरुआती मेहमान नवाजी जो है वो धीरे धीरे डरावने लगने लगती है। हार्कर नोटिस करता है कि काउंट सिर्फ रात में दिखते हैं।
अच्छा, और आईने में उनका अक्स भी नहीं दिखता?
बिल्कुल, और सलीब यानी क्रॉस को देखकर तो वो जैसे बिदक जाते हैं। फिर एक रात हार्कर जो देखता है उससे तो उसके होश ही उड़ जाते हैं।
क्या देखता है वो?
वो देखता है कि काउंट एक छिपकली की तरह महल की दीवार पर नीचे उतर रहा है।
बाप रे!
अब हार्कर को साफ हो जाता है कि वो मेहमान नहीं, कैदी है।
सोचिए जरा उसकी हालत, एक पढ़ा लिखा लॉजिकल आदमी और उसके सामने ये सब अलौकिक चीजें हो रही हैं, उसका तो पूरा विश्वास हिल गया होगा।
बिल्कुल हिल गया होगा, और मामला तब और बिगड़ता है जब उसका सामना होता है तीन खूबसूरत लेकिन खतरनाक पिशाचिनियों से।
ओहो!
वो लगभग उसे अपना शिकार बना ही लेती हैं कि तभी काउंट आ जाता है और उन्हें डांटता है, कहता है ये आदमी मेरा है।
उफ!
अब हार्कर के लिए सब कुछ साफ हो जाता है, काउंट कोई आम इंसान नहीं, वो एक पिशाच है, अमर, सदियों से जी रहा है
और अपनी मिट्टी के ताबूत में सोता है।
हाँ, और अब उसकी नजर लंदन पर है, वो वहां अपना आतंक फैलाना चाहता है। हार्कर समझ जाता है कि उसे भागना होगा।
वो भागने की कोशिश करता है।
हाँ, एक बहुत ही हताश और जानलेवा कोशिश। किसी तरह वो बच निकलता है, लेकिन ये अनुभव उसे तोड़ देता है, दिमागी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी।
यहीं से हार्कर का बदलाव शुरू होता होगा, है ना? वो विक्टिम से सर्वाइवर और फिर
हंटर बनने की राह पर।
हाँ बिल्कुल,
वो टूटता है, पर उसी टूटन से उसमें एक संकल्प जागता है, उस बुराई को खत्म करने का। लेकिन कहानी अभी इंग्लैंड जानी बाकी है।
सही कहा, बुराई अब लंदन की दहलीज पर है। लूसी, वो काफी लोकप्रिय है, सुना है?
हाँ, बहुत जिंदा दिल, खूबसूरत, उसकी तीन तीन चाहने वाले हैं, अमीर आर्थर होमवुड, डॉक्टर जॉन सीवर्ड और एक अमेरिकी एडवेंचरर क्विंसी मॉरिस।
तीन? अच्छा।
हाँ, लूसी आर्थर से शादी का फैसला कर दिए, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी
तभी क्या?
विटबी के तट पर एक तूफान में घिरा जहाज आता है, डेमेटर। अजीब बात यह है कि जहाज पर कोई जिंदा नहीं मिलता, कप्तान की लाश पतवार से बंधी है।
और जहाज पर लदा क्या है?
सिर्फ ट्रांसिल्वेनियाई मिट्टी से भरे 50 बड़े बक्से। ये काउंट ड्रैकुला का इंग्लैंड आगमन था।
ओहो, और इसका असर लूसी पर होता है?
फौरन लूसी बीमार पड़ने लगती है, पीली, कमजोर, उसकी गर्दन पर दो छोटे लाल निशान भी दिखते हैं। डॉक्टर सीवर्ट परेशान है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता।
और यही एंट्री होती है प्रोफेसर वैन हेलसिंग की।
को बुलाते हैं।
ये हॉलैंड से आते हैं।
वैन हेलसिंग सिर्फ डॉक्टर नहीं है, है ना? उनमें कुछ खास बात है।
हाँ, वो विज्ञान भी जानते हैं और पुरानी लोक कथाएं, रहस्यवाद भी। वो लूसी के लक्षण देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई आम बीमारी नहीं,
ये पिशाच का हमला है।
एग्जैक्टली। और यहीं से विज्ञान और अंधविश्वास का एक तरह से मिलन शुरू होता है इस लड़ाई में।
तो वैन हेलसिंग कोशिश करते हैं लूसी को बचाने की,
पूरी कोशिश। लसन के फूल, सलीब पहनाना, यहाँ तक कि जब खून की बहुत कमी हो जाती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं।
अच्छा।
और ये भी बड़ा सिंबॉलिक है, लूसी के तीनों चाहने वाले आर्थर, सीवर्ड, क्विंसी और वैन हेलसिंग खुद सब बारी बारी से अपना खून देते हैं,
जैसे अपनी जिंदगी का हिस्सा दे रहे हैं उसे बचाने के लिए।
हाँ, पर अफसोस सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। कभी कोई गलती से लसन हटा देता है, कभी खिड़की खुली रह जाती है, ड्रैकुला अपना रास्ता बना ही लेता है।
लूसी का चरित्र, कुछ लोग कहते हैं कि वो विक्टोरियन दौर की आदर्श महिला का प्रतीक है, कोमल, सुंदर, शायद इसीलिए वो आसान शिकार बनती है।
हाँ, ये एक व्याख्या है। कुछ आलोचक इसे उस दौर के स्त्री कामुकता के डर से भी जोड़ते हैं। खैर, नतीजा ये होता है कि लूसी की मौत हो जाती है।
लेकिन कहानी खत्म नहीं होती।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि और भयानक हो जाती है। जल्दी खबरें आती हैं कि खूबसूरत औरत, जिसे बच्चे ब्लूफर लेडी कहते हैं, वो रात में बच्चों पर हमला कर रही है।
ओहो, तो लूसी।
हाँ, लूसी पिशाच बन चुकी है। वैन हेलसिंग को ये भयानक सच आर्थर और बाकियों को बताना पड़ता है।
ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा उनके लिए।
बहुत ज्यादा। उन्हें लूसी की कब्र पर जाना पड़ता है और वहां उनका सामना होता है लूसी के पिशाच रूप से, मोहक पर खूंखार।
और फिर उन्हें क्या करना पड़ता है?
वही जो पिशाच कहानियों में होता है। आर्थर को, लूसी के मंगेतर को, अपने हाथों से उसके दिल में लकड़ी का खूंटा गाड़ना पड़ता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले।
उफ, ये तो दी बहला देने वाला मंजर है।
है, लेकिन यही दर्दनाक अनुभव उन सबको एक साथ लाता है।
उनका दुख गुस्से और बदले की आग में बदल जाता है
और यही जन्म होता है प्रकाश के दल का, क्रू ऑफ लाइट।
बिल्कुल। इसमें अब हैं जोनाथन हार्कर, जो अब सिर्फ वकील नहीं, योद्धा हैं।
प्रोफेसर वैन हेलसिंग, डॉक्टर सीवर्ड, लॉर्ड आर्थर होमवर्ड और बहादुर क्विंसी मॉरिस।
और मीना मरे भी, जो अब मीना हार्कर बन चुकी है।
हाँ, और मीना इस दल की जान है एक तरह से। वो सिर्फ विक्टोरियन आदर्श पत्नी नहीं है, देखभाल करने वाली, पवित्र, वो उस दौर की नई महिला भी है।
बुद्धिमान, संगठित, उसका टाइपराइटर और शॉर्टहैंड का ज्ञान बहुत काम आता है ना?
बहुत ज्यादा। वही सारी बिखरी हुई कड़ियों, डायरियों, चिट्ठियों को जोड़कर ड्रैकुला के खिलाफ सबूत तैयार करती है। मीना दिखाती है कि कोमलता और ताकत साथ साथ हो सकती है।
तो अब ये टीम ड्रैकुला के पीछे पड़ जाती है।
हाँ, पूरी तरह से। वैन हेलसिंग के नेतृत्व में वे लंदन में ड्रैकुला के ठिकानों को ढूंढते हैं, वो घर जहां उसने अपनी ट्रांसिल्वेनिया वाली मिट्टी के बक्से छुपाए।
अच्छा, वो बक्से उसके लिए दिन में सोने की जगह होते हैं।
हाँ, उसकी पनागा। तो ये दल उन बक्सों को ढूंढकर उन्हें पवित्र जल और होस्ट से नष्ट कर देता है ताकि ड्रैकुला उन्हें इस्तेमाल ना कर सके।
लेकिन ड्रैकुला चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो बदला लेता होगा।
बिल्कुल। और उसका निशाना बनती है मीना।
ओहो,
मीना पर हमला करता है।
हाँ?
वो डॉक्टर सीवर्ड के अस्पताल में घुस जाता है और मीना पर हमला करता है, और ये बहुत भयानक हमला है। वो मीना को अपनी छाती से खून पीने पर मजबूर करता है।
ये तो एक तरह का अपवित्र बंधन बना रहा है वो।
बिल्कुल, एक रक्त का बपतिस्मा। और इसका सबूत भी मिलता है, जब वैन हेलसिंग पवित्र होस्ट मीना के माथे पर रखते हैं तो उसकी त्वचा जल जाती है, एक निशान पड़ जाता है।
ये निशान उसके अभिशाप का प्रतीक है। कहानी यहाँ और भी गंभीर हो जाती है। अब ये सिर्फ दुनिया बचाने की लड़ाई नहीं, मीना की आत्मा बचाने की भी लड़ाई है।
सही कहा, पर यहाँ एक अजीब मोड़ आता है। यही अभिशाप, ये मानसिक जुड़ाव वैन हेलसिंग के लिए एक हथियार बन जाता है।
वो कैसे?
वैन हेलसिंग सम्मोहन, हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते हैं। सम्मोहित अवस्था में मीना ड्रैकुला की सोच, उसके ठिकाने के बारे में बता सकती है।
अच्छा, तो बुराई का हथियार ही बुराई के खिलाफ इस्तेमाल होता है।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे विज्ञान और रहस्यवाद दोनों की जरूरत पड़ती है इस लड़ाई में। सिर्फ तर्क या सिर्फ आस्था काफी नहीं है।
तो अब ड्रैकुला क्या करता है जब उसके ठिकाने नष्ट हो रहे हैं और मीना के जरिए उसका पता चल सकता है?
वो समझ जाता है कि लंदन अब महफूज नहीं। वो अपने आखिरी बचे बक्से के साथ वापस ट्रांसिल्वेनिया भागने का फैसला करता है।
और यहीं से वो पीछा शुरू होता है।
चेज सीक्वेंस। हाँ, उपन्यास का सबसे रोमांचक हिस्सा, पूरे यूरोप में ड्रैकुला का पीछा। दल दो हिस्सों में बढ़ जाता है, वैन हेलसिंग और मीना जमीन से, बाकी लोग नदी के रास्ते।
मकसद है उसे महल पहुंचने से पहले रोकना।
बिल्कुल। और ये वक्त के खिलाफ दौड़ है। उन्हें सूर्यास्त से पहले उसे पकड़ना है, क्योंकि रात में वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है और मीना का पिशाच में बदलना भी तेज हो रहा है।
तनाव बढ़ता जा रहा है
बहुत ज्यादा। और फिर आता है क्लाइमैक्स, ड्रैकुला के महल के पास, बोर्गो पास पर। सूर्यास्त होने ही वाला है,
उन्हें ड्रैकुला मिल जाता है।
हाँ, जिप्सियों का एक समूह उसका आखिरी बक्सा ले जा रहा होता है। भयानक लड़ाई होती है, जिप्सी भी लड़ते हैं।
और फिर अंत कैसे होता है काउंट का?
जैसे ही सूरज डूबने वाला होता है, उस आखिरी रोशनी में जोनाथन हार्कर अपनी कुकरी से ड्रैकुला का गला काट देता है।
और क्विंसी मॉरिस
जो खुद बुरी तरह घायल है, अपना बोवी चाकू सीधा काउंट के दिल में घुसा देता है। और ड्रैकुला सूरज के आखिरी किरणों में वो धूल में बदल जाता है। सदियों पुरानी बुराई का अंत।
और उसी पल मीना के माथे से वो निशान
गायब हो जाता है, वो आजाद हो जाती है।
लेकिन इस जीत की कीमत चुकानी पड़ती है।
हाँ, बहादुर क्विंसी मॉरिस अपने जख्मों से मर जाता है, पर उसके चेहरे पर शांति होती है ये जानकर कि मीना बच गई और मिशन पूरा हुआ।
कहानी का अंत कैसे होता है?
कुछ साल बाद जोनाथन एक नोट लिखता है। वो उस वक्त को याद करता है और बताता है कि उनका एक बेटा है जिसका नाम उन्होंने क्विंसी के नाम पर रखा है, क्विंसी हार्कर, एक नई उम्मीद।
तो ये थी ड्रैकुला की कहानी, वाकई रोमांचक। पर जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ डरावनी कहानी नहीं है, इसमें बहुत कुछ छुपा है।
हाँ, उस दौर के डर, चिंताएं, जैसे आधुनिकता बनाम पुरातनता। ड्रैकुला पुरानी सामंती दुनिया की बुराई है जो आधुनिक लंदन पर हमला करती है।
ये सवाल कि क्या हमारी तरक्की हमें पुरानी ताकतों से बचा सकती है?
बिल्कुल। और लैंगिक चिंताएं भी साफ हैं। पिशाच बनना, खासकर लूसी का, वो उस वक्त के दबे हुए यौन डर को दिखाता है।
मीना का किरदार जहां नई मजबूत औरत का प्रतीक है, वहीं लूसी पारंपरिक कमजोर शिकार बन जाती है।
फिर वो पूर्व बनाम पश्चिम का तनाव। ड्रैकुला बाहर से आया अन्य है जो पश्चिम को भ्रष्ट करने आया है। इसे रिवर्स कॉलोनाइजेशन के डर की तरह भी देखा जाता है,
कि कहीं बाहरी ताकतें पलटकर हमला ना कर दें।
और विज्ञान बनाम अंधविश्वास का द्वंद्व तो है ही।
हाँ, वैन हेल्सिंग दिखाते हैं कि दोनों चाहिए, दिमाग भी और आस्था भी, तर्क भी और प्रतीक भी, तभी जीत मिलती है।
और एकता की ताकत, वो प्रकाश का दल, अलग अलग लोग हैं पर साथ मिलकर ही जीतते हैं।
क्विंसी का बलिदान दिखाता है कि जीत की कीमत होती है, व्यक्तिगत साहस और टीम वर्क दोनों जरूरी हैं।
कहानी में सिंबल्स भी बहुत हैं, खून, आईना, महल, कोहरा।
हाँ, खून जो जिंदगी भी है और मौत भी, आईना जिसमें आत्मा नहीं दिखती, ये सब मिलकर वो गॉथिक माहौल बनाते हैं। और डायलॉग्स, लिसन टू देम, द चिल्ड्रन ऑफ द नाइट आर लाइट्स एंड यू आर वन ऑफ द लाइट्स, ये पंक्तियां याद रह जाती हैं।
सच में ड्रैकुला एक कहानी से बढ़कर एक मिथक बन गया है,
जो हमें याद दिलाता है कि सभ्यता शायद उतनी मजबूत नहीं जितनी हम सोचते हैं। और बुराई,
हाँ, वो सवाल कि बुराई बाहर से आती है या हमारे अंदर ही छुपी होती है।
शायद इसीलिए इतने साल बाद भी ड्रैकुला हमें खींचता है, अंधेरे का वो अजीब सा आकर्षण।
और शायद अच्छाई की जीत में हमारा विश्वास भी।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनोखी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।